आप लोग इस दुआ को एक एक लफ्ज़ ऐसे पढ़ें कि हर एक बात जहाँ पूरी होती है ना वहाँ रुक जाए। और जैसे हम बात अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बीच में रुक रही हूँ ना, आप इस तरह फील कराएं कि ये दुआ आपके दिल की पुकार है। अपने अपने उन पे शुरू कर दें, पेंसिल आपकी उस लफ्ज़ पे हो जो आप मांग रहे हैं, जहाँ एक बात पूरी हो जाए फिर उसको फील करें कि मैं क्या कह रही हूँ। गो अहेड, ऊंची आवाज़ से। देखिए आप लोग जो पढ़ रहे थे ना, एक जब हम एक लय में पढ़ रहे होते हैं ना, लय में समझते हैं, एक हमारी हमारा रिदम चल रहा होता है, तो बस दफ़ा हम उसकी ट्यून और उसके लफ्ज़ों में खोए होते हैं लेकिन हम महसूस नहीं करते। और अगर आप इसको पढ़े, रब्बन अग़फिर लना, रुकें ज़रा, दिल में एक हूक उठनी चाहिए, हाय अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे गुनाह बहुत है। और जब आप एक फिर लना कहें ना तो जमा है ना हम सब को, तो इसमें इज्तमाही गलतियाँ कमी बेशियाँ, ये वही बात है कि ला तो आखिजना इन दसीना, इस तरह की कैफियत दिल में लाए। अब इस वक्त आपको अपनी कोई गलती नज़र नहीं आ रही तो वो आपकी नज़र कमज़ोर होने की अलामत है, लेकिन हम जिस तरह इनफरादी गलतियाँ करते हैं ना उस तरह हम इज्तमाही गलतियाँ भी करते हैं। और याद रखिए कि इनफरादी गलतियों की सज़ा हमें मिलती है और इज्तमाही गलतियों की सज़ा पूरी कौम को मिलती है, इम्मत मुल्लत को मिलती है। चूँकि अख्लाकियात सीखते हुए हम वो बातें सीख और सुन रहे हैं जिसका असर पूरी उम्मत पे पड़ता है, राइट? हम या तो किसी जगह एक खुशी का ज़रिया बनेंगे या किसी जगह महरूमी का बनेंगे। तो जब आप रब्बन अग़फ़िर लना कहें तो आप दिल में महसूस करें, अल्लाह अपने से शुरू करके पूरी उम्मत पे ले जाए, अल्लाह हम सारों को ही माफ़ कर दे, इस कमरे में जितने उनको माफ़ कर दे, इस स्कूल में जितने लोग हैं अल्लाह उन सबको माफ़ कर दे, अल्लाह इस शहर में, इस मुल्क में, इस दुनिया में, यानी आप पूरी मिल्लत को, पूरी उम्मत को इसके अंदर जमा करें, आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ में एक दर्द पैदा होगा। फिर वली इख़वानी नल्लज़ी न सबकू न बिल ईमान, और उनको भी माफ़ कर दे जो हमसे पहले चले गए ईमान में, यानी ईमान की हालत में जो दुनिया से चला गया, अल्लाह उनको भी बख्श दे। इसमें आप अपने असलाफ, बड़े माँ बाप, नाना, दादा, दादी, ख़ानदान से शुरू करें और पूरी दुनिया पे चले जाइए। फिर वला तज अल्फी खुलू बिना गिल गिल्लिल्लज़ीन आमनू, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कीना ना रखना। असल में ये हिस्सा जो दुआ का ना, ये प्रेजेंट से है, जो पीछे हुआ वो तो गुजर गया, हमारा भी माफ़ कर दे, हमारे बड़ों का भी माफ़ कर दे, लेकिन अब इस वक्त जो चीज़ आपके मेरे लिए आगे बढ़ेगी वो क्या है कि अल्लाह अब आइंदा के लिए हमारे दिलों में कीना ना रखना। किन के लिए? जो ईमान वाले हैं। यकीन करें ये दुआ पढ़ने वालों के दिल बहुत साफ़ होते हैं, पढ़ते नहीं, मांगने वालों के। अगर आज आप शऊर के साथ ये दुआ मांगेंगे ना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके दिल की नई ज़िंदगी है। कीना, बुग़्ज़, हसद, रकाबतें, यही तो वो गंदगी हैं कि जिसको आज हमने अपने दिलों में इतनी जगह दे दी कि फिर अल्लाह की मोहब्बत जगह बना नहीं पाती। ठीक है, तो आज हमारा चूँकि टॉपिक अख़लाक़े सईया है तो इस दुआ को अपना विर्द बना लीजिए, हिर्ज़े जान बना लें। क्या? कि रब्बना इन्नक रऊफुर रहीम, ए हमारे रब बेशक तू बख्शने वाला और मेहरबान है। तो दुआएं मांगने से साथ मांगने के साथ साथ अमली कोशिशें भी करनी है और आज हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें ऐसा बना दे कि हम स्पॉट फ्री हो जाएं, स्टेनलेस बनना है आपने। ये जो आज का सफ़र है ना, ये अख़लाक़े सईया क्या है, लिखिए शीट में, शुरू में थोड़ी जगह दी हुई है आपको, कोशिश कीजिए कि पेज भी पलटें तो साथ वाले को आवाज़ ना आए, यहाँ बैठे को पता चल रहा है कि आप पेज पलट रहे हैं। ये भी सारी चीज़ें आपको मुझे केयरफुल बनाएंगी इंशाल्लाह। बस वह हम कहते हैं हमने क्या किया, मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं, मैं तो नहीं दुखाती, और बस लोग इतने ज़्यादा अनअवेयर होते हैं अपने बारे में कि सारी दुनिया उनके बारे में एक बात कहती फिरे, उनको खुद पता ही नहीं होता और बिलीव में उनको नहीं पता होता, वजह यह कि किसी ने बताया नहीं होता। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानेंगे उतना इंशाल्लाह आपको अपने आप को पहचानने में मदद होगी। तो पीछे हमने बात की थी अख्लाक की, अख्लाक क्या है? पुराना होना। और अख्लाक क्या है? किसी काम का बग़ैर तकल्लुफ़, बग़ैर तरद्दुद के कर लेना। अच्छी बातें अगर बग़ैर सोचे की जा रही हैं, हो रही हैं, तो वो अच्छा अख़लाक है, वही अख़लाक़ फ़ाज़िला है, वही अख़लाक हसन है। और अगर अख़लाक में कुछ बुराइयां हैं, खुद ब खुद ही बुराइयां होती हैं। आप कहते हैं मुँह से निकल गई थी, और कहाँ से निकलती है बात, सोचा नहीं था, बग़ैर सोचे बोल दिया, तो अख़लाक़ से ये होता ही है कि केयर फ्री एटीट्यूड। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, देखिए समवन डोंट नो बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनको पता ही नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं जो कहते हैं हमें नहीं पता, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ सीख लेंगे, गिल्ट में जिएंगे, हाय हमें कुछ नहीं आता, आपको बड़ा आता है, आप बहुत ही नेक हैं और आपने तो ये किया वो किया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको ये पता ही नहीं कि अभी हमें नहीं पता। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें पता लग जाए कि हमें क्या नहीं पता, ठीक है। तो अख़लाक़े सहिया क्या है, मुझे तो ऐसे लगता है नासूर, आप किसी के लिए एक नासूर बन जाए, आपके साथ रहने वाले सिर्फ अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं इसलिए, तकदीर के फ़ैसलों को कबूल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, और रिश्तों को काट नहीं सकते इसलिए आपके साथ रह रहे हैं, वो कतरहमी नहीं कर सकते। और ये कौन लोग होंगे जो किसी के साथ नसब के रिश्तों में बंधे हुए हैं, ऐसे घर में पैदा हो गए, ऐसे लोग आ गए उनकी ज़िंदगी में, या फिर शहर से कोई ऐसा ताल्लुक़ टूट जुड़ गया, कोई ससुराली रिश्ता ऐसा बन गया, या आप किसी के घर आ गए या कोई आपको ले गया, या आपके भाई की बीवी बन के कोई आ गई और कोई आप किसी के नंद की मतलब नंद बन के चली गई, या वट एवर। कहने का मकसद है कि रिश्तों की डोरियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ निभाना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के ये लोग अख़लाक़े सैया के मालिक होते हैं। 10 लोगों से पूछिए अपने साथ रहने वालों से, मैं कैसी हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, आप मेरे साथ खुश रहती हैं, क्या मैं आपके बारे में, आपने जो मेरे साथ निभा का फ़ैसला किया, क्या हकीकत में आप आज भी इस पे खुश हैं। इस तरह के कड़वे मीठे खट्टे मीठे सवालात करके लोगों से पूछिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। एक छोटी सी बात से बात शुरू करती हूँ। एक इंग्लिश बुक में से पढ़ा था कि एक कंपनी थी और उस कंपनी में 2-3 फ्लोर थे और बहुत सारे लोग वहाँ मिलके काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक वर्कर आया, उसने डोर पे एक साइन लिखा हुआ देखा कि आज उस शख्स का इंतकाल हो गया जो हमारे इस इंस्टीट्यूट या हमारी इस कंपनी की तरक्की के रास्ते की रुकावट था। बात समझ गए, आज द पर्सन हु डाइड कौन था, दैट वाज एन ऑब्स्टिकल इन आवर प्रोग्रेस। अब एक वर्कर आया, उसने भी ये देखा, तो जाहिर है जो हर एक आ रहा था वो भी यही देख रहा था, और साथ ही एक नीचे नोट लिखा हुआ था कि आज उसका फ्यूनरल इसी बिल्डिंग की बेसमेंट में होगा, तो जो भी इस मैसेज को पढ़े वो नीचे आ जाए। अब जो आके देख रहा है उसको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ तो हो ही रही है, साथ ही एक सस्पेंस भी है कि ज़रा देखे तो सही वो कौन था जो हमारे इस इंस्टीट्यूट या हमारे हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट था। खैर वो शख्स नीचे गया जिसने ये पढ़ा, देखा तो पहले भी वहाँ और भी लोग थे और लोग आ भी जा रहे हैं, जो जो आता जा रहा है वो ऊपर से मैसेज पढ़ता है और नीचे चलता जाता है। अब वहाँ एक नोट लिखा हुआ था कि अंदर कमरे में उस शख्स का फ्यूनरल है, सबको इकट्ठे जाने की इजाज़त नहीं है, गो वन बाय वन। अब ये शख्स जिसने ये बात कही है वो कहता है कि मेरे से आगे भी लाइन लगी हुई थी तो आई वॉज वेटिंग। लेकिन उसने क्या देखा कि जो शख्स अंदर जाता है, फ्यूनरल को खोलता है यानी कफन को खोल के चेक देखता है और एक चीख मारता है और वहाँ से पलट आता है। अब इसके दिल में और भी था कि कोई बहुत ही अपना गया दुनिया से जिसको देखकर लोग दुख के मारे ऐसे हो रहे हैं, और बिल आखिर फिर इसकी बारी आ गई। इसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं अपने ऊपर काबू पाऊँगा। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ, और अब आप भी सोच रहे होंगे वो किसका जनाजा था, किसकी डेड बॉडी थी। उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था, हर बंदा जो भी उसमें देखता था उसको अपनी तस्वीर दिखती थी। क्या समझे, बहुत सारे लोगों को कफन में ढल के पता चलेगा कि हम रोड़े थे, हम रुकावट थे। दूसरों की ज़िंदगी में हमने सुख नहीं दुख ढाले, और दूसरों को आगे बढ़ाया नहीं, हमने उनको पीछे खींचा, लैग पुलिंग की। लेकिन उस वक़्त फ़ायदा नहीं होगा। वलवन नलना कर रतन फन तबर रौ मिन हम कमा तबर रौ मिन्ना। काश एक बार हमें अगर दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो हम इनसे ऐसे बेजार हो जाएं जैसे ये आज हमसे बेजार हुए पड़े हैं। लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बात जो कफन में पढ़ के समझ आए, वो बात जिसको वहाँ जाकर महसूस करें, अगर दुनिया में उसको जानने लग जाए, तो ये है अखलाक सैया। हम में से हर एक या तो अपने साथ रहने वालों के लिए एक नेमत है और रहमत बनता है, या जहमत है। अपने आप को सामने रख कर पेश कीजिए इस अदालत में, मैं अपने साथ वालों के लिए रहमत हूँ कि जहमत। और दुख की बात क्या है, बहुत सारे लोग बनना रहमत चाहते हैं, नीयतें अच्छी होती हैं, इरादे भी अच्छे होते हैं, और वो दूसरों को बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन कोई एक आध वीक पॉइंट, कोई एक आध बैड हैबिट उनको दूसरों के लिए जहमत बना देती है। अखलाके सैया क्या है, उन जड़ी बूटियों को नोच के फेंकना कि जो आपके ईमान से लेकर इबादात और फिर मामलात का खून चूस रही हैं। हमारी इबादात भी अच्छी नहीं होती अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं होता। लड़ाई झगड़े के बाद जो नमाज़ पढ़ी, क्या नमाज़ पढ़ी बताएंगे आप? उस नमाज में कहाँ है या का नाबुद या का नस्ताइन, और कहाँ है उसमें प्यार मोहब्बत की बातें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम। वो नमाज़ें भी निरा बोझ है। वो कहते हैं ना कि तेरे ये सजदे तुझे काफिर न कर दें, कि तू झुकता कहीं है, दिल तेरा कहीं है। आज हम सब अपने ऊपर लेकर इस सेशन को लेंगे, और यकीन करें कि अगर इस सेशन की कीमत रखी जाती दुनियावी कीमत से, तो वही बात जो कुरान में शायद चौथे पारे के आखिर में मेरा गुमान है कि उस दिन क्या चाहेगा इंसान, कि काश ज़मीन भर के सोना दे दूं और मैं आज के अजाब से बच जाऊं। तो हम सब अपने घर बेचकर अपनी दुनिया की हर बिलोंगिंग, जिसको हम बिलोंग करते हैं, वो देकर कम से कम ये सेशन ख़रीद लें, क्या सोचकर कि इसके बाद मेरे लिए खैर है। ये तो नहीं होगा कि कल से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कल से ठीक तरफ रुख मुड़ जाएगा। आज अपनी ज़िंदगी के दिन को आप भी सोचिए कि आप एक कफन में लेटे हुए हैं, चले जनाजा, आपकी जनाजा सर्विस बिल्कुल रेडी है। देखिए एक दिन तो होना है ना, मेरे कहने से कोई जाएगा तो नहीं, और मेरे रोकने से कोई रुकेगा भी नहीं। ये तो आपके मेरे साथ बंधी हुई चीज़ है, ये वादा तो देकर आए थे कि आ रहे तुम चलो मैं आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे आप चलिए, आप पीछे आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं, तुम जाइए इन्ना इन्ना बिकुम ललाहिकुन, तुम चलो हम आए। जैसे दरवाज़ा कोई खोलता है ना, पाकिस्तान में जो दो दरवाजे होते थे पहले दौर में, तो अक्सर उसको हमारे बड़े देखकर कहते थे ये देखो एक दरवाज़ा दूसरे से कह रहा है तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आया। और वाकई एक बंद करें उसके साथ दूसरा सही जगह से बंद करें तो बंद होता था। तो आप और मैं जिस दिन दुनिया में आते हैं उसी दिन जाने की खबर है। उधर अजान है तो इधर इकामत है, उधर अगर कान में इकामत दी जा रही है तो इधर नमाज जनाजा। कहने का मतलब यह है दिस इज़ टाइम टू चेंज। हम वक्त को नहीं बदल सकते, बट हम खुद को बदल सकते हैं। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। और एक जुमला बड़े शोर से बोलने लगी हूँ, हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं खुद को बदल कर। इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज्ड। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। सूरत राद में अल्लाह इस बात को पेश करता है, और गालिबन सूरत तौबा में भी, दो जगह कुरान में ये मफहूम कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। और ये वो मौजू है जो अमूमन पीछे रहता है, पसे पुश डाला हुआ है, वरा जहूरी हिम की कैफियत है, वजह के टाइम नहीं है, शॉपिंग में है, बिजी हैं, खाने पकाने में, जॉब में, पैसे कमाने में, बच्चों को देखने में, यानी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। और मैं इस वक्त अगर पैसे कमा रही हूँ और मैं ये पढ़ने में नहीं आ सकती तो मैं बेवकूफ़ हूँ। सीधी सी बात है कि मैं जोड़ा बना रही हूँ और वो सजना मुझे कोई नहीं। याद रखिए, अच्छी से अच्छी शक्ल अख़लाक़े सैया की मौजूदगी में बदतरीन लगने लगती है। यानी आप कह सकते हैं कि खल्क कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, खुलक बुरा हो ना तो खल्क भी अच्छी नहीं लगती। और हमारे बड़े कहा करते थे कि चम नहीं कम प्यारा, कोई तुम्हारी चमड़ी नहीं देखेगा, स्किन नहीं अच्छी लगे, गोरा रंग नहीं किसी को अच्छा लगता, लोगों को तुम्हारी आते काम। और यही बात तो अल्लाह भी कहता है कि सही मुस्लिम की रिवायत, आपको 2-3 दफ़ा मैंने इस पूरे सफ़र में लिखाई भी है कि इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला अम्वालिकुम, ना अल्लाह तुम्हारी सूरतें देखता है, ना उससे मुतासिर होता है, ना माल देखता है। क्यों? दोनों उसने दिए, सूरत भी अल्लाह का फैसला, माल भी अल्लाह का फैसला। वला कि यंज़ुरु, लेकिन वो देखता है, इला आमालिकुम व कुलूबिकुम, वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। क्योंकि ये हम कसब करते हैं, ये कमाते हैं, आमाल कर लीजिए, फमे यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा, कमाइए, खूब खुला मैदान है, स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, शेयर्स खरीदिए और इसी तरह से दिल साफ़ करते जाइए। तो आज का ये सफ़र जो है ना, असल में दिल की सफाई है, क्लिनलीनेस ऑफ हार्ट। बर्तन तो रोज़ धुलते हैं घरों में, कपड़े तो शायद हफ्ते में 2-3 दफ़ा धुलते होंगे, और क्या धुलते हैं हमारे इर्द गिर्द? बारिश होती है तो दरख्तों के पत्ते तक धुल जाते हैं, सड़कें धुलती हैं। और 13 मई, 13 मई जो है ना, वो नॉर्वे में वो है जिसको आप कहते हैं 14 अगस्त, हमारा जश्न आज़ादी है, वो पूरा शहर धो देते हैं उससे पहले, कंकरियाँ आके उठाते हैं, रोड्स को ऐसे साफ़ करते हैं जैसे हम अपने घरों को साफ़ करते हैं, चमक रहा होता है, 67 मई बोलते हैं उसको। उससे एक दिन पहले पूरा शहर ऐसे होता है जैसे उजला उजला, हर एक ने अपनी सड़क गली को धो लिया, पत्ते छत्ते उठा लिए हैं, तो दिलों को धोना है। आज हम ज़ाहरी क्लीनलीनेस पे तो इतने हरीस हैं, पहले हमारे घरों में साबुन होता था, बल्कि वो भी नहीं होता होगा, कभी कोई ऐसा भी दौर गुजरा होगा, कोई मट्टी गाची इससे हाथ धोते होंगे लोग। चलिए, हमने तो बड़े होने से पहले साबुन देखा है, फिर हैंड वॉश आ गए, फिर हैंड वॉश अलग तो फेस वॉश अलग और बॉडी वॉश। और कभी मैं किसी के वॉशरूम में रखे लव्स बॉडी वॉश को देखूं, मुझे एक बार ज़रूर डेड बॉडी याद आती है, कैसे ही बॉडियाँ धुलनी है हमारी, आज इस बॉडी को जिसने मिट्टी में जाना है, कितने क्लींजर हैं। और फिर स्क्रब्स आ गए, फिर हाइजीनिक आ गए, फिर ऑर्गेनिक आ गए, फिर बॉडी एंड बाथ आ गया, फिर प्योर आ गया, फिर आर्टिफिशियल आ गया, फिर सेंटेड आ गए, फिर विदाउट सेंटेड, ये 12 तो मैंने गिन लिए और मेरे लिए कोई 18 और होंगे जो मुझे भी नहीं पता होगा या मुझे याद नहीं है। ज़ाहरी चीज़ों को धोना, जी बताइए, वो क्या बुला है, वो कोई नई चीज़ आ गई है और लोग खरीदेंगे, रज के खरीदेंगे, नया नाम जो साहब आ गया, वो जो लेना ना आए वो तो और भी महंगा होता है, बिलीव मी। कभी को सोचे किसी के बाथरूम में जाके देखो, इतना थाल भरा होता है कि बंदे को दिमाग ही खर्च करना पड़ता है। बल्कि मुझे याद है शेक्सपियर का कॉल है या न्यूटन किसी बड़े का, कहता मुझे नहीं फ़र्क पता चलता है कि शैम्पू क्या है और बॉडी क्या है, मैं जो सामने उसी से सब कुछ कर लेता हूँ। कौन दिमाग इतना लगा, सारा रिसर्च, और तो फिर बाथरूम में घंटों तो लगेंगे ना। लेकिन दिल के धोने का क्या इंतज़ाम है, दिल की बीमारियों का क्या इलाज है? बैठे बैठे यहाँ खिंच पड़े ना तो एकदम दिमाग में आएगा कि लगता है कि दिल पे कोई बोझ है, लेफ्ट साइड है, खिंच रहा है, सख्त हो रहा है, ये हो रहा है, दर्द हो रही है, कोई नहीं सोचता कि ये बोझ शायद गुनाहों का ना हो। तो लिहाजा एक बहुत ही गंदी सी मिसाल दिल में आई है, बच्चा पैम्पर में गंदगी कर दे, कितनी को देर उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा विद इन मिनट्स आप उसको साफ़ करेंगे। तो जो बाहर की गंदगी आती है वो समझ आती है, तो गंदे दिल के साथ आप कितनी को देर जी सकते हैं? बात समझ रहे? गंदे बच्चे को तो आप किसी के उठा ना सकें, तो अपने दिल को गंदा, कहीं किबर है तो कहीं खुद पसंदी है तो कहीं इसमें तकब्बुर है और कहीं हसद है तो कहीं बुग़ज़ है, क्या नाउज़ु बिल्ला मेरा आपका दिल डस्टबिन है, ट्रैश कैन है आपका मेरा दिल, हर गंदी आदत, हर गंदी चीज़ इसमें। तो आप देखिए कि झूठ, झगड़ा, रास फाश करना, तुर्श मिजाजी, हिर्स, तमा, लालच, ऐब तलाशना, मजाक उड़ाना, गीबत, चुगली, बुख्तान, गुस्सा, बुखल, कीना, इसराफ, धोखा देना, रियाकारी, गफलत, आजजी और सुस्ती, खुद पसंदी, तकबर, जुल्म और हसद। ये तो मैंने आपकी शीट पढ़ी है। और आपको पता है ये शीट कितने पेजेस की थी? ये मैंने इसको स्क्वीज कराया, 18 पेजेस की थी आज की शीट। मैंने कहा नहीं दूंगी इतनी, छोटी करें इसको, छोटी करें, छोटी करें। और यकीन करें, ये भी एक बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज़ है। मैं इस चीज़ में सोच में पड़ती हूँ कि सैयाद के लिए लिस्ट सबसे मोटी क्यों बन गई, अखलाक के सैया। और इसमें मैंने ने कहा एक एक में दो दो कट्ठे डाल दो, और मैं पढ़ाऊंगी भी आज कुछ ऐसे ही कि एक तरह के इकट्ठे ले लूंगी। लेकिन आप ज़रा सोचिए तो सही, जब ये आप अपनी इस शीट को ज़रा आज हार्ट शेप बना लें, एक दिल बनाएं आज की एक्टिविटी, उसमें डालें ये गंद, फिर वो दिल लेकर जाएं दुनिया को बिकता। सुरख रंग का दिल तो सारे ही खरीद लेंगे, और 14 अगस्त, वो क्या कहते हैं, 14 फरवरी होगी तो और ही खरीदेंगे, हैं? 14th फरवरी में दिल महंगे खरीदे जाते हैं, फूल बिकते हैं। आप ज़रा ऐसा गंद का भरा हुआ दिल लेके तो जाइए लोगों के सामने, खरीदो मेरा दिल, खरीदते हो, लोग थूकेंगे, ये अल्लाह ने पर्दों में डाल दिया। और बिलीव मी, बाज़ दफ़ा दिलों में वो कुछ होता है एक दूसरे के लिए कि अगर साथ रहने वाले को खबर ही भी मिल जाए ना हमारे बारे में कि हम उसके लिए ये सोच रहे हैं, तो वो कभी शक्ल ना दिखाए, बाहर सड़क पे खड़ा हो जाए, हमारे घर में ना आके बैठे। दिलों में इतनी कदूरतें, रंजिशें, और क्या अल्लाह की बना। यानी मुझे तो लग रहा है आज बस ट्रैश कैन का ढक्कन खुलने वाला है। मुझे अभी से बैड स्मेल आ रही है, फील हो रहा है कि इतना दिल गंदा होगा, फिर उसमें कहाँ आएगा अल्लाह का प्यार, उसमें कहाँ आएगा तवक्कुल, शुक्र, जो सारे अच्छे बातें पढ़ चुके हैं। आज चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? आप जाकर ढूंढ लीजिए अंदर दिल में कोई 18-20 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है क्लीन इट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी करेंगे ना। और ज़्यादा एक और सोच लीजिए, ये सारा तस्किया का टॉपिक, इस पर तो सबसे ज़्यादा शायद मैं बोलती हूँ। आप देखिए कि आप, मिसाल देती हूँ आपको, ये सारा कुछ इकट्ठा समझ आ जाएगा, ये नाम तो बस एक पॉइंटर्स हैं, असल तो सारा दिल की गंदगी। क्या चीज़ों का घर में गंद होता है, हम थोड़ा सा ट्रैश को देखते हैं। देखिए आप कितने शौक, प्यार और फिर मेहनत और मोहब्बत के साथ ग्रोसरी खरीद के लाते हैं ना। मसलन चलिए आपने आलू खरीदे, केले ले लिए, दो एक फ्रूट ले लिया, पैसे दिए ना, वज़न तुला तो छिलकों के साथ तुला ना, घर में आ गया, वज़न उठा कर लाए तो छिलके भी साथ थे, इट्स ओके, ये ज़रूरत है। अब आप केले काटते हैं, छीलते हैं, उसकी चाट बना रहे हैं, काट के केले डाल दिए, छिलके छोड़ दिए, सेब काटा उसको छोड़ दिया। अब वो जो छिलके अलग हुए और गूदा अलग हो गया, ज़रा से इसको इमेजिनेशन में लाएं कि यहाँ तक भी ठीक था। अब वो छिलके पड़े रहे थोड़ी देर, केले के छिलके काले, सेब के छिलके काले, और उस दरवाजे को थोड़ी देर के लिए किचन के बंद कर दीजिए। अगर आप अगर दूसरे कमरे में से किचन में जाएंगे ना, आपको एक हल्की सी ऐसी एसिडिटी सी फील होगी, आती है स्मेल। और अगर खिड़कियां दरवाजे खुले हों तो फिर थोड़ी देर बाद आप आके देखें तो उस पे थोड़ी सी वो, जैसे वो छोटी सी एक होती है ना गुत्ती सी, मच्छर से भी छोटी, हैं, कौन सी फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज आ जाएंगी, बिल्कुल। और अगर थोड़ी देर और छोड़ दें तो मच्छर भी आएंगे, 2-4 घंटे छोड़ दीजिए तो मक्खियाँ, और उसके बाद फिर अगर 1-2 दिन बाहर ही छोड़ दें ना उसको फेंके, तो सुट्टियाँ और पता नहीं सुसरियाँ क्या कुछ आएगा। और वही जो अभी 1 दिन पहले आप इतने प्यार से खरीद कर लाए, और टिन पैक्स और फलाने पैक्स, आखिर में क्या दिखेगा, गंद का ढेर। अब अगर आप वो छिलके उतारने के फौरन बाद उस ट्रैश को डंप करते, छिलकों को उसके बैग्स में डालते और जहाँ डालना था उधर फेंक देते, तो कुछ भी ना होता। ये है असल में तज़किया नफ्स। साथ रहते हुए फ्रूट के साथ छिलके आएंगे, बीज होंगे, टहनियाँ आएंगी। हम जिन लोगों में रहते हैं ना, हम अपने घरों में कह लीजिए, अपनी फैमिलीज में और जहाँ भी हम बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द हर तरह के हालात होंगे। दो बर्तन होंगे, खनकेंगे, गाड़ियाँ दो लगेंगी, उनके आपस में टकराने का खतरा होगा। लेकिन करना क्या है? क्लीन एट इंस्टेंटली। जो लोग खाना पकाने के दौरान ही सब छिलके डंप कर देते हैं, कभी भी किचन गंदा नहीं होगा। घर में चींटियाँ आएंगी नहीं, सुसरियाँ आएंगी नहीं, मकड़ियाँ आएंगी नहीं, लेकिन अगर आप वो चीज़ें पड़ी रहने देना तो वो ख़राब होती है। तो ये जो कुछ है ना अख़लाक़े सैया, ये दिल में पड़ी रहने वाली बातें हैं। लिख लें, जो बात रात भर आपके दिल में पड़ी रही, उसने आपके दिल के बर्तन को गंदा कर दिया। रात गई तो बात गई, ये जुमला लिखा, सुना कभी? अपनी जिंदगी का असूल बनाए, रात गई तो बात गई। इस कमरे में किसी के साथ कोई खटपट हुई है ना, इस कमरे में बैठकर, वो डोर इसकी आखिरी हद है। इस डोर से आपने निकलना ही नहीं है जब तक आपका दिल साफ ना हो जाए। और उस कमरे में चले जाएं, चले जूता लेना है, सीढ़ियाँ नहीं आप उतर सकते इस जगह से, कोई गंदी चीज़ साथ लेकर गए। और कभी किसी तीसरे बंदे के साथ दूसरे बंदे की बात डिस्कस ना करें। और ये हो नहीं सकता कि दिल में हो और आप शेयर ना करें, इम्पॉसिबल। वही बात है कि ट्रैश कैन में रखा हुआ छिलकों का गंद, लेकिन आप फेंक नहीं रहे और उसकी बू ना आए, इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जब दिल में बात रहती है तो खराबी आती है। और जो आज मैंने आपके लिए तरतीब सिलेक्ट की है, अल्लाह करे कि इसका हक दे सकूं, बहुत सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि आदत है आज के हर चीज़ की खोज में जाने की, सारी बुराइयां सामने रख के घंटों सोच के, जो मुझे असल में, जो सारे इंसानी मामलात में हमारे अखलाकी ऐब दिखते हैं, उसकी रूट कॉज, पहली वजह तकब्बुर, खुद पसंदी। अना खैरुम मिन्हु, किसने बोला था? इबलीस का जुमला था, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नार, मुझे आग से पैदा किया। वह खलकता हूँ मिन तीन, रीजनिंग की, अक़ल इस्तेमाल की, और लिहाजा मैं बेहतर। और उसको ये पता ही नहीं कि आग तो निरी डिस्ट्रक्टिव थिंग है और मिट्टी तो प्रोडक्टिव है, हर प्रोडक्टिविटी तो मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो क्या पता चला कि खुद पसंदी और तकब्बुर ये बीज है, या बल्कि जिसको कहें ये कीड़ा है, जब दिमाग में घुस जाता है तो कोई अच्छा नहीं लगता। और अगर पीछे मैं लेके चलूँ ना आपको, अच्छी बात आज जो पढ़ी थी उसमें दो पहली चीज़ें क्या पढ़ाई थी? अखलाक हसना में सब्र, शुक्र। जब आप थैंकफुल होंगे ना अल्लाह के, तो आप बंदों के भी होंगे। ये भी आप पढ़ चुके, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्ला। खुद पसंदी का ऑपोजिट क्या है कि आप किसी के लिए शुक्रगुजार हैं ही नहीं। आप ये नहीं करते कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, आप उसके लिए हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को इतना बड़ा हाई लेवल, जूम इन जूम आउट को भी सामने रख ले, इतना बड़ा कर लेते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत कितनी है, आपके लिए वो जान कितनी मार रहा है, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा समझें, हमारा जिस्म, आंखें हैं, है ना? आंखें क्या करती हैं भाई? देखती हैं। अच्छा, आपने किसी ने, हम सब आंखें तो वैसे देखते ही हैं, एक दो आंखें दिखाते भी बड़ी हैं, ये अलग बात है कि कोई हमारी आंखें दिखाने से भी खुश ना हो, लेकिन चलिए, आंखें देखना दिखाना तो एक मुहावरा। आपको पता है कि रियल में ये आंख क्या है? यानी जब मैंने ये प्रैक्टिकली, हमने लैब में ये एक्सपीरियंस किया था, भैंस की आंख लाए थे, इतना ऐसे ऐसे जैसे थ्रिल थ्रिल होती है ना चीज़। और जब उन्होंने, हमारे जो भी टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, जस्ट एक पिन हल्की सी उन्होंने उसमें ऐसे की, उसकी जो बाहर की झिल्ली थी ना, जो बाहर के जो होता है ना, तो वो सब पानी बन के निकल गया। ये आंखें पानी है, पतली सी झिल्ली में, तभी तब देखे ना, यूँ यूँ, जैसे आप किसी बैलून में पानी डालें तो उसको हाथ से इधर करें तो इधर हो जाता है, इधर करें तो इधर, ये पानी है, इसके अंदर सब पानी है। अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ या आँख की झिल्ली को रपच्चर कर दे तो ये पानी बह जाएगा, आँख बह गई, कहते ना आँखें बह निकली, ये वही होता है। चलिए, बहुत ही उलझन आती है, ऐसे लग रहा था जैसे जल निकल रहा है, गंदा लेस तार मादा। कान क्या है? कुरकुरी हड्डी है ना। आप देखिए कान में, कान ना तो बोन है, काट क्या बोलते हैं इसको? जी। अब आप देखिए कि कुरकुरी सी एक हड्डी है, चलिए कान तो बिल्कुल ही आंखों से फर्क हो गए। नाक क्या है? ये सर पे एक मुंह पर डंडा सा, ये एक पहाड़ रखा हुआ है। आप कहते हैं कि तसव्वुफ की जुबान में इस जिस्म को पूरी कायनात कहते हैं। वो कहते हैं ना एक आलम बाहर है तो एक आलम इधर है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, ये आंख, ये जो नाक है ना, ये पहाड़ है जमीन, और ये तुम्हारी स्किन जो है ना, ये मट्टी है, और जो नाक है ये पहाड़ है, और कान पता नहीं चश्मे हैं पानी, आंखें चश्मे हैं, और इस तरह की बातें, कान जो ये गा रहे हैं उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा सारी बातों का मकसद, अब ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ठीक, और एक अल्लाह ने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर इनको मुनासिब जगहों पर लगा दिया, ज़रूरत है ना। अब मिसाल है, लड़ाई हो गई कान की आंखों से, तुम कैसी हो? तुम तो निरा पानी हो, और ये क्या गोल गोल काले काले घुमाते हो बीच में सफ़ेद दर दब्बों में, मुझे देखो मैं कैसा हूँ, और तुम तो सामने हो और मैं तो ऐसे छुपा हुआ हूँ। मुझे बताइए कभी कोई सोच भी सकता है कि अपनी आंखों को निकाल कर बाहर फेंक दे? चूँकि मेरे कानों को नहीं पसंद, या मुझे नहीं पसंद, चले आंखें तो बड़ी पसंद है, नाक नहीं पसंद हमें, बहुत मुश्किल में डालता है। कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि ये हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने मुझे आपको एक दूसरे की ज़रूरत बनाया। सबसे पहली बच्चे की ज़रूरत माँ है, बाप, घर के कुछ अफराद जो हमारी तालीम और तरबियत में बहुत हिस्सेदार होते हैं। फिर इसी तरह से एक दो करते जाइए, आगे से आगे बढ़ते जाएं। मैं और आप इंसानों की इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, और याद रखिए 100% मेरे जैसा दूसरा कोई होगा भी नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस्म में कानों की जगह पे भी आंखें ही लगा दें, नाक की जगह पे भी आंखें ही लगा दें, क्या सोचकर कि चलो सब एक तो होंगे। आप सोचिए ना, अगर सारे एक साथ काम करने लगे, एक ही जैसे हों, तो फिर सारे तो एक ही काम करेंगे, सारे ही देखने। अब कानों की जगह आंखें लगा दें तो क्या फिर कान बन जाएंगी वो? नहीं, हमें इंसानों की ज़रूरत है। और इस्लाम का एक बुनियादी खूबसूरत असूल जो मुझे सीरत में मिला है, काट फेंकना नहीं है, इसलाह कर लो। नबी सल्लम का जो स्टाइल था ना, रिफॉर्मेशन का था, आज भी इस्लाम का यही है। जिधर गए, जिस ज़मीन के टुकड़ों पे गए, फतह किया, क्या किया, कॉन्कर किया, अमन से हो गया या किस से हो गया, इसको पीछे कर दीजिए। असल में बाद में क्या था कि वहाँ के सिस्टम की बुराइयाँ निकाली, बस खूबियाँ डाल दी। काट के नहीं फेंका हमारे दीन ने। याद रखिए, कोई कहता है इस हाथ को काट के फेंक दो, इस नाक को काट के फेंक दो, नहीं होगा। फिर आपको पता चलेगा कि नाक क्या करता है। इवन मैंने पढ़ा था एक जगह, गलत है कि सही, कि कनाडा में कुछ साल पहले उन्होंने उनको मार दिया, बैक्टीरिया, ये जो मलेरिया फैलाने वाले जान होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉस्किटोज को ख़त्म कर दिया कि नहीं हमें चाहिए। तो जूँ ही मॉस्किटोज मरे तो वहाँ कोई दो चार और बीमारियाँ इतनी आ गई। ये मैंने 2-3 साल पहले की बात पढ़ी थी। क्यों? कि उन्होंने कहा कि वो जो मॉस्किटोज थे जो मलेरिया तो लाते थे, लेकिन वो कितने और बैक्टीरिया को खा जाते थे। जब वो मर गए तो मलेरिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन और चार चीज़ें आ गई उनको, फिर उनको आर्टिफिशियली पैदा करना पड़ा उनको, उन्होंने बनाया। क्या पता चला कि हम में से हर एक ज़रूरी है। समटाइम हम ये सोचते हैं कि आई एम नॉट इन द राइट कंपनी। बच्चे से पूछें, कई बच्चे होंगे वो कहेंगे मैं ठीक घर में नहीं पैदा हुआ, आई डोंट थिंक सो, ये मेरा भाई होना चाहिए था छोटा, और ये छोटी बहन तो मुझे एक आंख नहीं भाती, ये तो मेरी सारी चीज़ें ख़राब करती है। आप कभी अपने बच्चों से पूछ के देखे, वो जैसे कहते हैं ना कि कहते क्या, मैंने ये भी कहीं सुना ही था, किसी इंग्लिश स्पीच में सुना था, एक स्पीकर से वो कहने लगा कि एक औरत थी तो उसके 14-15 बच्चे थे, 14 बच्चे थे, तो हर साइज़ का बच्चा, तो जो बड़े बच्चे थे उनको बड़ी शर्म आती थी कि हमारे इतने बहन भाई क्यों, जहाँ गए लाइन की लाइन गाड़ी से निकल रही और जा रही और जा रही, तो वो बड़े शर्मिंदा होते थे। तो एक दिन जो उसका बच्चा था कुछ 6-7 साल का, जिसको ज़रा सा शौर आया, उसको भी शर्म आनी शुरू हो गई, तो उसने कहा कि मॉम व्हाई डू यू हैव सो मैनी किड्स, मम्मी आपके इतने ज़्यादा बच्चे क्यों हैं? तो माँ ने उसे एक सवाल किया था कि फिर मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए था, वेयर शुड आई स्टॉप, तो कहने का आफ्टर मी। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। मैं पैदा हो जाती, बाकी ना होते। याद रखिए, मैं अपना एक पर्सनल आपके साथ फोबिया डिस्कस करती हूँ। स्क्रीन के ऊपर अक्सर स्क्रीन सेवर्स आ जाते हैं ना, तो उसमें ग्लोब होता है। आई लव ग्लोब। और कम पहले बड़े हार्ड ड्राइव ये क्या होते थे, डेस्कटॉप्स होते थे ना, तो हमारा घर था इधर ही थे, अमेरिका में ही थे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड का जो कंप्यूटर ना, उसके ऊपर जब भी वो थोड़ी देर स्टिल करते थे ना, तो उसमें ग्लोब आ जाता था, और वैसे रिवॉल्विंग घूमता घूमता, जैसे आप जब भी आप देखे सेटेलाइट पिक्चर्स। मैं जब अकेली होती थी ना घर में, तो मैं उस कमरे में जाती थी और ग्लोब देखती थी, तो मुझे डर लगता था, मुझे समझ नहीं आता था क्यों, ग्लोब ही है ना। लेकिन फिर मैंने उसको डिस्कवर किया, ग्लोब है अंदर, इंसान नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कहीं समंदर में डूब जाऊंगी, गिर जाऊंगी। इंसानों के बगैर दुनिया इतनी खौफनाक लगे हमें। आप घर से बाहर निकल, आप कहते हैं रश बहुत है, हम कहते हैं एक दिन सारी रोड सड़क गाड़ियाँ बंद कराते हैं, आप जाइए अकेले, आपको खौफ होएगा। आज कर्फ्यू है, आज कोई कोई मैच हो रहा है घरों में। हमें इसी टकराव में बच बचा के जीना है। दिस इज आवर जिहाद। और कहते ना कि तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबरा के ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिलीव मी, वो लोग आपके मोहसिन हैं जो इरिटेटिंग है, और आप उनकी वजह से इरिटेट होने के साथ साथ एनर्जी भी लेते हैं। दो चीज़ों को रगड़ के देखिए, ये देखिए अभी भी करें ना, तो मेरी दोनों उंगलियां गर्म हो गई हैं। हम बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाएं अगर हमारे इर्द गिर्द फ्रिक्शन ना हो। करना क्या है, वही करना है जो अभी करके यहाँ पहुँचे हैं। तो खत्ता तुकाती क्या कहते हैं कि उनसे बचो, बचना बचा कर, तो काती ही के लफ्ज़ हैं। जितना बच बचा के इस दुनिया से गुजर गए, वरना देखिए इसमें नेक और बद की भी बात नहीं है। इमेजिन कीजिए कि नबी सल्लम के सहाबा, अभी आपने 10 पढ़े हैं ना अशरा मुबशरा, और आपने अगर वो भी पढ़ी है, बहुत सारों ने पढ़ी हुई ऑनलाइन पे हमारे साथ वो बुक हयात सहाबा के दरख्शां पहलू, 100+ सहाबा। आप देखिए हर सहाबी की मुख्तलिफ खूबी थी, और कभी कभी दो लोगों की नहीं लगती थी। स्ट्रांग लीडरशिप होती है ना, जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है, तो जितनी मर्जी छुरियाँ तलवारें आप एक जगह जमा कर लें, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि हम पैकिंग करते हैं ना अक्सर सफ़र में। अब सफ़र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूटने वाली हैं, कुछ तोड़ने वाली भी हैं। इट्स ओके, यू कैन कीप देम इन द सेम बॉक्स। करना सिर्फ क्या है, कोई ग्लासी चीज़ है तो उसको ज़रा वेलवेट के और फोम के अंदर लपेट के डाल दीजिए, ताकि उसको कोई टच ना करे। और अगर कोई बड़ी सख्त चीज़ है, तो उसको ऐसी जगह नीचे रखिए कि वो बीच में हिट ना करे। डालना सबको एक ही बॉक्स में, ये ज़िंदगी का असूल है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नाम करके ज़ाया ना करें। ये जो फ़ैसला होता है ना, आई कैंट, आई एम लिविंग, मैं इस घर में नहीं रह सकती, चले हस्बैंड वाइफ हैं तो डाइवोर्स, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम थी तो मुझे अलग कर दें, मैं इस सास के साथ नहीं रह सकती, मैं इनकी शक्ल नहीं देख सकती, आई नीड स्पेस और दिस एंड, ये अपनी हार होती है। ज़िंदगी का ये असूल बनाएं कि किसी एक बंदे किसी एक किस्म के हालात में भी मैं ये ना कहूँ कि मैं इसके साथ नहीं चल सकती। अपने ऊपर लें, किसके साथ आपकी नहीं बनती, किसके साथ आपकी नहीं निभती। आज से आप अपने अखलाक में ऐसी तब्दीलियां लाएं कि आपकी उसके साथ निभे। आप कहते बुराई तो उसमें, मैं क्यों बदलूं खुद को। देखिए नबी सल्लम की ज़िंदगी की मिसाल कुरान में पहले ही पारे में पढ़ के आए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना ना कहा करो। क्या हरज था राइना कहने में, हर्ज ये था कि कुछ लोगों ने दिल का बुग़्ज़ दबाते हुए रायना को राईना कहना शुरू कर दिया। तो आयत क्या होनी चाहिए थी, या अय्युहल यहूद ला तकूलू राईना, ए यहूद नबी को ये ना कहा करो हमारे चरवाहे। सबको समझ आ रही है ना बातें। सहाबा को रोक लिया कि तुम वो लफ्ज़ ही छोड़ दो, बात समझ गए। इस्लाम का असूल यह है कि हर वो चीज़ जो फ्रिक्शन पैदा करे और आपकी नेकी, आपका इत्तेहाद, आपकी यूनिटी खतरे में पड़ जाए, लीव दैट थिंग, इट्स बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन लूजिंग अ पर्सन। बहुत सारे लोगों को उस वक्त साथी याद आता है जिसके साथ एक वक्त था कि आप कहते थे मैं इसके साथ रह नहीं सकती, गिव मी डिवोर्स, डिवोर्स मी प्लीज़, आई नीड डिवोर्स। डिवोर्स ऐसे लगता है जैसे कॉफ़ी का कप है जो आप मांग रहे हैं, लेकिन जब मिल जाती है ना तो फिर आप रोते हैं, कहते हैं चले कोई था ना, झगड़ता था लड़ता था कोई था, आज तो घर में नहीं है। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। याद रखिए ये हमारा नेमतों के साथ मामला है, नेमत होती है मानते नहीं है। आप जिस बंदे को अपने लिए मुश्किल समझ रहे हैं वो नेमत है, बिलीव मी वो नेमत है। ठीक है आपकी उससे नहीं लगती, यही तो खुशी है। अगर आपकी उससे लग गई तो जो कमी आप में वो उसमें भी आ जाएगी और वो काम नहीं होगा। हर बात को अपने लिए खैर समझें। मसा आप देखिए कि वही जो वाक्य आपने सुना होगा कि एक वज़ीर था तो उसको हर बात में ये कहने की आदत थी जो हुआ अच्छा हुआ, वट हैपन दैट वॉज़ गुड। एक दिन उस बादशाह की उंगली कट गई, थोड़ा कट आ गया, हस्बे आदत वज़ीर के मुंह से निकल गया जो हुआ खूब हुआ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि भाई कमाल हो गई, मेरा हाथ कटा तुम्हें क्या हुआ। उसने पकड़ कर वज़ीर को डाल दिया जेल में और उसके बाद एक काफ़िला था उसकी तरफ चल पड़ा, इन्होंने कहीं सफ़र में जाना था। वहाँ जब गए तो वही जो जैसे एक ऐसे पेगन कल्चर में होता है कि लोग अपने किसी बुत के नाम पे किसी को भेंट चढ़ाते थे, कुरानदाजी करते थे जिसका नाम आ जाता था, वहाँ गए या फिर उनके बड़े सरदार को डालते थे। किस्सा मुख्तसर, उस बादशाह का नाम नॉमिनेट हो गया कि ये इस बुत के नाम पे इसको भेंट चढ़ाएंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। जब उसको चढ़ाने लगे तो देखा कि बादशाह की तो उंगली पे कट आया हुआ है। कहा ना ना ना, अब सोचिए कहा जब हम मुस्लिम पता नहीं क्या अल्लाह के रास्ते में देते हैं, ये तो हमारे और अल्लाह के बीच में है ना, वो बुत के ऊपर और अपने कल उस नाम पे क्या के ना ना ना, हम कटी हुई या ऐबदार चीज़ तो अपने बुत को नहीं देंगे, कोई सालम शख्स लेकर आओ। अब क्वेश्चन ये था कि अब बादशाह नहीं है तो उसके बाद जो भी है उसको ले आओ। तो उन्होंने उसके दरबारियों में जो ज़्यादा अच्छा सेहतमंद था उसको दिया, बादशाह बच गया। जो ही बादशाह बचा उसको वज़ीर की बात याद आ गई, जो हुआ सो खूब हुआ, कहने का बड़ा अकलमंद था। अपने लश्कर से कहा आगे नहीं पीछे चलो वापस चलो, अंदर गया महल में था, जाके वज़ीर को बाहर निकाला जेल से, माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये भी बड़ी बात है किसी का एक्सक्यूज़ कर देना। कहा कि तुमने जो कहा था सच कहा था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा कि जो तुमने मेरे बारे में कहा था वो तो सच का था, ये बताओ कि मैंने भी तो कोई अच्छा नहीं किया, तुम्हें जेल में डाल गया, तुमने इसमें भी ये कहा था जो हुआ खूब हुआ तो इसमें क्या खूब हुआ। कहने लगा बादशाह सलामत, ये तो और भी खूब हुआ। वो कैसे खूब हुआ? कहा जब आपको उन्होंने पकड़ा तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, तो आप ना होते और मैं लश्कर में होता तो कौन मरता, बादशाह नहीं तो वज़ीर, तो आप मुझे साथ ले जाते तो आज मैं फौत हो चुका होता, तो आपने मुझे जेल में डालकर मेरे साथ अच्छा मामला किया। ये जिंदगी का असूल बना लें। मैं कहती हूँ सीना खोल कर, यानी जिसको कहते हैं ना मर्द है ना कोई, तो चौड़े सीने के साथ खड़ा होकर कह दे आए कोई माई का लाल और मुझसे लड़ ले, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। आपका अखलाक ऐसा हो जाए कि आप दुनिया के किसी बाजार में खड़े होकर आ जाओ कि आओ बिस्मिल्लाह आई विल नॉट फाइट यू। ये आपकी मेरी अपनी ज़िंदगी का सुकून और इत्मीनान और ख़ुशी है। आपका दिल चाहे दिल दिमाग को ट्रैश कैन बनाइए, कचरे का ढेर बनाइए, कूड़े का डब्बा बनाइए, और चाहे तो इस दिल को एक खूबसूरत वॉज शीशे का बनाकर उसमें एक गुलाब का फूल लगा दीजिए। वॉज शीशे के क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर बाहर से खूबसूरती है। और एक सवाल लिखिए ज़रा, अगर हमारे दिल ये मिट्टी के बर्तन के अंदर ना होते, अल्लाह नूरु समावाती वलर्द मसल नूर ही का मिशकात, मिशकात है ना, रिब्स, पहले स्किन फिर रिब्स के अंदर चेस्ट, चेस्ट के अंदर हार्ट, अल्लाह ने इतने पर्दों में क्यों छुपाया हुआ है कि मेरे बंदों के दिलों में जो गंदियाँ ना वो गंदगियाँ वो ना ही दिखें दूसरों को। जैसे हम भी अक्सर घर के जो खुफिया खाने से इससे चीज़ें होती हैं उनको हम इधर उधर डाल देते हैं, क्या पता चला नहीं, मेरे पास कुछ नहीं प्लेयर है। आप कोई, किसी को आवाज़ आ रही है? कोई कुछ हो रहा होगा? मेरे पास तो सब नॉर्मल है, आप लोग देख लीजिए जो भी है। कोई बात कीजिए आप लोग जी, अभी तक जो बात हुई उसमें से जी। आप जी प्लीज। जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं सुना मैं उनके लिए दोहरा देती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को मुस्तकिल ओवरलुक कर रहे हैं और वो उससे मिसयूज़ करके आपके ऊपर चढ़ाई करता है। देखिए, मैं आपकी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ आवर पेरेंटिंग प्रॉब्लम। बच्चा जब जब इंसान होता है ना जी। ये किसी के कान बज रहे होंगे, एक मिनट ज़रा मुझे चेक करने दें इधर क्या इश्यू हो गया है। देखिए, आपकी बात मैं साथ साथ फोकस हूँ। अगर बचपन से आपको ये सिखा दिया जाए ना कि क्या बात सुन के चुप रहना और क्या बात नहीं सुननी, तो ये इशू नहीं होगा। आपके पास कंट्रोल होना चाहिए अपना। लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, कब करें? खड़े खड़े भागते दौड़ते, बात करनी बात करनी। भाई सब्र कीजिए, इट्स माई टाइम, लेट मी चेक, कैन आई गिव यू दिस। आज हमारी बहुत सारी एनर्जी हमारे लोग ले जाते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ना कैसे करें, शर्म आती है। नहीं, शर्म नहीं आनी, आपकी हदें आपको बतानी चाहिए। मैं इस पे बहुत सारी प्रैक्टिकल, जब काउंसलिंग करते हैं ना लोगों के साथ, तो मैं कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उनको देती हूँ। मैं आपको भी सबको ही दे देती हूँ। हो सकता है आपका ये इशू ना हो, या कभी हो भी जाए तो आप उसे रिलेट कर सकते, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दूँ। बस आप देखिए कि एक सास है, अपनी बहू को कहती हैं, तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, क्या तुम, मैं सारा दिन बाहर रहती हो तो मेरा बेटा बेचारा सूख के कांटा हो गया। वो पहले भी कांटा ही था, अब आपको ज़्यादा ही लगने लग गया बिलफर्ज। तो माँ की मोहब्बत है, पहले तो आप खुश हों। अब आपकी सास, आप अपने ऊपर, सास कह ले, माँ कह ले, बहू ही कह ले किसी की, कि तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती। वाकई आपके बेटे का तो नहीं रखती, मैं तो अपने शौहर का ख्याल रखती हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, तुम सारे दिन बाहर रहती हो, खाना कौन पकाता होगा, वो बेचारा ये है वो है। अब कर लीजिए, अब वो तो ये बोल गई, अब आप क्या करेंगी? रोएंगी, हाय हाय ये बातें सुना गई, और नहीं, और नेगेटिव हो जाए, हाँ हाँ ये बस ये वो। नहीं, आप पहली बात सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह इसको माँ कहते हैं। बच्चा यहाँ तक भी भरा होगा ना उसका पेट, तो माँ कहती खाया ही कुछ नहीं, ये खाता ही कुछ नहीं, ये पप्पू डब्बू शब्बू खाता ही कुछ नहीं। तो इसका था कि आपका हस्बैंड अभी माँ को अपना वो पप्पू शप्पू लग रहा है जो खाता ही कुछ नहीं है। हैं, कितने खुश हो रहे हैं आप कि आपका तो नहीं किसी का इशू। आप देखिए ना कि एक होते आप कहते, ए, बात सुन के मेरे सर से पाँव में आग लग गई, इधर से गई उधर निकली, दिल में तीर लगा। जो मर्जी करें जनाब, ये भी मेरा इम्तिहान है, शाहीन मेरा इम्तिहान है इस वक्त बनी हुई। कोई बात नहीं, करें आप जो करना है जी। अब आप देखिए कि इसमें आप नेगेटिव हों कि पॉजिटिव हों, एक अलग चीज़ है। पहली बात है, हमेशा ज़िंदगी का असूल रखें, अपने आप को ठंडा रखें। सर ठंडा पाँव गर्म, ये हमारे बड़े कहते थे, सर ठंडा रखिए और पाँव गर्म। और कल भी मैं किसी से बात करी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग ठंडा और दिल साफ, दिल गंदा ना हो। आप हर बंदे के साथ काम कर सकते हैं, हर एक जगह आप चल सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी मैं शक्ल नहीं देख सकती, जिसके साथ मैं चल नहीं सकती, जिसके साथ मैं खड़ी नहीं हो सकती। करना क्या होगा, आपकी बात ही का जवाब दूंगी। इसको नहीं छेड़िएगा, इसमें जा रही है मज़े इनको, तो इसको बंद करके खोल लें, फिर इसका इशू कोई नहीं है, इसको हम दोबारा खोलेंगे। इसमें से आ रही थी, लेट सी, आप पहले मुझे बताती तो मैं इसको दोबारा, अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगी, आप बैठे। अब आप देखिए कि एक सूरत यह है कि आप किसी की बात सुनकर परेशान हो गए। जब आप किसी की बात सुन के परेशान हुए ना, आपने अपना सारा कंट्रोल उसको दे दिया। इट्स जस्ट लाइक हाई जैकिंग, लिख लें ये जुमला, हाईजैकिंग जहाज़ों में नहीं होती, ब्रेन में भी होती है। दिन में कई बार जहाँ हम मिलके रहते हैं ना लोगों के साथ, हम हाईजैक हो जाते हैं। कैसे हाईजैक होते हैं? वो हमारा माइंड ले लेता है, और जो ही आपने अपना कंट्रोल छोड़ा, आप उसके इशारों पे चलेंगे। गलत, सही, ठीक, बे वो नहीं, डोंट लूज योर कंट्रोल। अभी गाड़ी चला के आए ना, कितनी दफ़ा मैं तो जिस दिन से आई हूँ ज़्यादा ही आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठती हूँ। ड्राइविंग में जितनी रश ड्राइविंग इधर होती है, मुझे उसमें आदत भी नहीं रही। और अब की छोटी छोटी सड़कों पे हम जाते हैं और लोग कहते हैं रश है, तो मेरी हंसी निकल जाती है कि ये रश नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कितना, जब खासतौर पर हाईवे पे आते हैं कितना ज़्यादा रश होता है। और ये भी मुझे बता रहे थे कि 60 किलोमीटर है, लेकिन मोस्टली पीपल 70 to 80 चलाते हैं। ठीक है, अब आप करें क्या कि आप अपना अगर कंट्रोल छोड़ देते इस गाड़ी में, गाड़ी का, तो फिर क्या होता आपके साथ? वही होता जो मोस्टली होता है। आप कहते हैं फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं भी हूँ बोली। भाई आप क्यों बोले, आपको गुस्सा क्यों आ गया? आप इतने कमज़ोर हैं कि इतनी जल्दी में आपने गिव अप कर दिया? एक तरफ तो ये है, अब उसी मिसाल को कंटिन्यू करें। जब आपको किसी ने ऐसी बात की, रीजनिंग करें, देखो ना उनको अपने बेटे से प्यार है ना, तो माएँ तो ऐसी ही होती हैं, एक बात। फिर दूसरी सूरत आप ये है कि आप एनालिसिस करें, माइट बी, देखिए 100 नहीं, 10 to 20% माइट बी इट्स ट्रू, जिसने आपको बात की कि वाकई आप, चूंकि हस्बैंड कुछ कहते नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा उनके मामले में केयरलेस हो चुकी हैं। पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल, कोई इसमें झूठ नहीं होता। एनालिसिस कीजिए अपना, आपने एनालिसिस भी कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको लगता नहीं ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आई एम नॉट लाइक द वे शी थिंक। अब आप क्या करें? आप अपनी सास के पास जाएं, प्यार से उनका हाथ पकड़ें, रियली करके तो देखिए, अम्मी, मामा, मम्मी, जो भी आप अपनी सास को कहते हैं, आपकी बात से मेरा दिल बड़ा दुख है। और अगर सच्चे होंगे ना, तो आपके दो आंसू भी निकल आएंगे। करके देखिए, आपके साथ रहने वाले किसी बंदे ने आपको मिसअंडरस्टूड किया और अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आपके साथ रूडली बात की ना, मियाँ को ना जाके अंदर खुस 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 करें, अम्मी जी ने ये कहा है, आप भी कहें, वैसे मेरा नाम ना लीजिएगा, तो क्या वो उसको गैब से कोई इल्हाम हुआ है कि ये सारा इशू है? बस औरतें पहले अपने हस्बैंड्स को जाकर खूब गर्माती हैं, फिर कहती हैं मेरा नाम ना लीजिएगा, ये भी उस बेचारे को आप मुश्किल में डाले हुए, डबल मुश्किल में। वो नहीं, मियाँ को तो बीच में आने ही ना दें। और आप, एक सूरत है, आप बदतमीजी करें, आपको क्या पता ये मैं इनके कितने लाड देखती हूँ कितने, आप बस वो अम्मी जी का हाथ पकड़ लें, जुबान खुद ही रुक जाएगी, आप उनको लम्स से महसूस कराएं, अम्मी जान आपकी इस बात से मेरा बहुत दिल दुख है और मेरे दिल में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है और मैं ये करना ही चाहती हूँ, बात ऐसी नहीं है, यकीन करें आप करें, अम्मी जी को अपनी पड़ जाएगी। नहीं, ये भी ऐसा ही है, ये तो शुरू से ही खाता ही नहीं है, बात ख़त्म। देखिए इधर एक कोड बना ले, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो आप मैं दीन सीखने बैठे हैं, ये आज उसका क्लाइमेक्स चल रहा है, और अगर ये ठीक है ना, तो पीछे इंशाल्लाह फिर इबादत और अकायद भी ठीक होंगे। हम अपनी जंगें खुद लड़ें, ये भी एक कोड वर्ड है। अगर आपको इंसानों की इस दुनिया में जीना है, डोंट मेक एनी वन कि जिसके पाँव पे सर रख, पाँव पे पाँव रख कर आप खड़े हों और आपका कद लंबा हो। हर दरख्त को अपनी जड़ों पे खुद खड़ा होना पड़ता है। एक पत्ता अगर दरख्त से उतर गया ना, तो अब आप उसको एल्फी से भी चिपका देंगे, वो उसके साथ नहीं होगा। तो कोशिश करें कि पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीद है बहार रख। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई गलत कहे ही ना। और मेरा यकीन है कि अगर ये सानेहा एक दफ़ा ऐसा हो गया, अगली रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी अम्मी जी आपको आपके हस्बैंड के बारे में ये तो नहीं कहेंगी कि आप उसका ख्याल नहीं रखती, कुछ और कह लें तो आप उसका भी इलाज कर लीजिएगा। बिलीव मी, ये एक दफ़ा वैक्सीनेशन देना होता है। और फिर इसके बाद फॉरगिव फॉरगेट, मटी पाओ। जब हम बहुत ज़्यादा, अब ये देखें ना कि खुद पसंदी और तकबर पर मैं लेके आपको आना चाह रही हूँ, जब अम्मी जी के दिल में था कि मैं बहुत अच्छी केयर टेकर ऑफ माई सन, तो ये अच्छी नहीं, तो फिर ये ख्याल आएगा ना, तकब्बुर, बढ़ाई, खुद पसंदी। गीबत हो नहीं सकती जब तक खुद पसंदी ना, ये सारी 18 लफ्ज़ों की लिस्ट जाकर देख लीजिएगा। खुद पसंदी के बगैर गीबत नहीं होती, ताना नहीं दिया जाता, इल्ज़ाम नहीं लगते, लाइक पुलिंग नहीं होती, जो नेगेटिविटी होती है उसकी रूट ये है कि मैं अच्छी हूं ना, तुम नहीं अच्छी, इसको खत्म कीजिए। और जिस दिन आपने इसको काबू पा लिया, इंशाल्लाह बाकी मामले दुरुस्त होंगे। तो खुद पसंदी क्या है, अपने आप को ओवर लाइक करना। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, आप देखिए कि आप और मैं सब यहाँ सीधे खड़े हो जाएं तो हम सबको अपना अपना कद समझ आ जाएगा ना, कौन किससे लंबा है। कोई फ्यू इंच लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। सेकंड एग्जांपल लीजिए, एक पहाड़ है, एक शख्स उस पहाड़ पे खड़ा, हम ही में से जिसका कद मिसाल है कि 5 फीट 5 इंच था, नाप लिया उसका, सबने नापा। अब वो यहाँ से उठकर एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गया, टॉप ऑफ द हिल खड़ा हुआ, उसको क्या लगेगा कि वो आपसे ऊंचा हो गया। उसको आपको यूं देखना पड़ेगा ना, नीचा दिखना होगा ना, तो आप सब उसको जो पहले बराबर भी थे ना, वो उसको छोटे लगेंगे, और वो दिल में क्या खुश हो रहा, हा हा इनको मुझे यूं देखना पड़ रहा। आप उसको यूं देखेंगे, वो कहेगा देखा मैं कितना ऊंचा हो गया हूं। ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स बट यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। आप वो क्या सोच रहे हैं कि आप, वो बंदा आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जब आपके बराबर था तो वो आपको अपना बराबर दिखा 5 फुट का, तो जब पहाड़ी पे खड़ा वहां देखेंगे तो वो शायद 2 फुट का दिखे। जहाज नीचे बड़ा होता है ना, ऊपर छोटा हो जाता है ना। ये है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर को सब छोटे छोटे कीड़ियां मकोड़े दिखते हैं, और ये सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन लोगों को वो असल से भी छोटा दिखता है। अपने दिल से ये सब निकालना है। पहली बात याद रखें कि ये आपके मेरी है ही नहीं चीज़। अल्लाह के नबी की हदीस नोट कीजिएगा, हदीस कुदसी है इब्ने माजा 4174, किबरियाई अल्लाह की चादर है। अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें, अल किबरियाओ रिदाई, रिदा कहते हैं चादर को, शॉल। अल्लाह ताला फरमाता है किबरियाई मेरी चादर है और अजमत मेरा आज़ार है, ट्राउज़र। जो कोई इनको मुझसे छीनेगा मैं इसको जहन्नुम में डाल दूंगा, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि तकब्बुर क्या, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जूता पहनना? नहीं, तकब्बुर क्या है, हक से मुंह मोड़ना। इब्ने मसूद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक शख्स ने कहा कि एक इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, इसके जूते भी अच्छे हों, तो आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो हक से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने का नाम है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 265। इसको ज़िंदगी का गोल बना लीजिए। ये बात इतनी सच्ची है, और वो कैसे कि एक इंसान के सामने हक आया, हक क्या है, या उसने किसी का हक देना था, या कोई हक मांगने आ गया, या हक के सामने खड़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ता नमाज, ये है बतर, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड इट, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू मच टू डू, नहीं नहीं आई हैव टू गो समवेयर एल्स, ये एटीट्यूड है तकब्बुर। और लोगों से मुंह फेरना क्या है, अच्छे कपड़े पहन लिए अब किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, जरासीम लग जाएंगे हमें, अगर नमाज पढ़ी तो कपड़ों में रिंकल्स आ जाएंगे, ये है तकब्बुर, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि तकब्बुर कैसे होता है। बदतरीन तकब्बुर अल्लाह की आयतों को सुनकर मुंह फेरना। सूरत लुकमान 6:7, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी, लोगों में कोई ऐसा है जो गाफिल कर देने वाली बातों का खरीदार बनता है ताकि इल्म के बगैर लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहका दे और इनका मजाक बनाए। जब इसका आगे लिखा है कि जब हमारी आयात इसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तकब्बुर से मुंह मोड़ लेता है, गोया कि इसने इनको सुना ही नहीं, इसके कानों में बहरापन है, फिर इसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। तो क्या पता चला, बदतरीन तकब्बुर के, आपसे ये सवाल असाइनमेंट में पूछा जाएगा, तकब्बुर की बदतरीन सूरत क्या है। कुरान का हुक्म आपके सामने आए और आपके नो 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 आई कैंट, इट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव डाउट्स अबाउट दैट, एवरीबॉडी इज़ डूइंग दिस। ज़रा सोचिए इस तारीफ पे लेकर देखें कितने लोग मुतकब्बिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी बात, तकब्बुर करने वाले कौन लोग हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। सूरह नहल 22, इसमें भी अल्लाह ताला ने यही मिसाल दी, वकुलूबुहुम मुनकिरतुम वहुम मुस्तकबिरून, इनके दिल ही इनकार करने वाले हैं और वो तकब्बुर करते हैं। और तकब्बुर की बदतरीन एग्जाम्पल इबलीस। सूरत बकरा 34, वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदम फसजदू इल्ला इबलीस अबा, आप बोले अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया यानी सख्ती से इनकार किया और असल में अंदर से मुतकब्बिर था। फिर इसी तरह से दूसरी मिसाल मुतकब्बिर की, फिरौन। सूरत कसस 38:40, وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري। फिरौन ने कहा, अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी माबूद को नहीं जानता, यानी ओनली मी, मेरा ही, तुम्हें मुझे ही मानो। और आगे जाके आता है वस्तकबरा, और उसने तकबर किया। और इस तकबरा और किबरा में क्या फ़र्क है? इसमें टू सीक है, बड़ा ही चाहते हैं, हमें इज्जत दो, हमें प्रोटोकॉल दो, हमारे आगे रुको सजूद करो। कहा वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्दी बगैर हक, तो फिरौन इसकी बदतरीन मिसाल था। फिर इसी तरह इसकी तीसरी मिसाल कारून। इतरा कर चलने वाले को अल्लाह ने ज़मीन में धसा दिया। ये भी असल में उसी सूरत जो अभी आयतें पढ़ी हैं ना कसस, उसी में आगे आएगा, लेकिन हदीस में आपको लिखा दूंगी, बुखारी की 5789, अबू हुरैरा रावी हैं। बनी इसराइल में एक शख्स एक जोड़ा पहनकर किब्र व गुरूर में सरमस्त, बालों में कंघी किए हुए अकड़ कर इतराता हुआ जा रहा था। अल्लाह ताला ने इसे ज़मीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक किसी में तड़पता रहेगा या धंसता रहेगा। और ये उसी का जिक्र है कारून का। फिर इसी तरह जो तकब्बुर करे उसका अंजाम क्या है? तो पहली बात है, ऐसा शख्स क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र करम नहीं करेगा। मुस्लिम 5457, इब्ने उमर की रिवायत, जो शख्स अपने कपड़े को तकब्बुर यानी मुतकब्बिराना अंदाज में ज़मीन पर घसीटते हुए चलता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़रे करम नहीं करेगा। क़यामत के दिन एक आवाज़ लगेगी, कहाँ है तकब्बुर करने वाले, ऐनल मुतकब्बिरून। इब्ने उमर की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को लपेटेगा और फिर इन्हें अपने दाएं हाथ में लेकर फरमाएगा, अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, जोर वाले जाबिर किधर हैं, तकबर करने वाले किधर हैं, इनुल मुतकबिरून। फिर ज़मीन को अपने दाएं हाथ में लेकर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, जोर वाले जाबिर बादशाह कहाँ हैं, तकबर वाले कहाँ हैं। सही मुस्लिम 7051। और मुतकबिर का दूसरा बुरा अंजाम क़यामत के दिन, चींटियों की मानित छोटे छोटे बनाकर मैदान हशर में लाए जाएंगे। इब्ने अमर की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अमर, तिर्मिज़ी 2492, क़यामत के दिन मुतकब्बिर लोग छोटी छोटी चींटियों की मानिंद हशर में लाए जाएंगे। इनको जिल्लत मुर्दों की सूरत में ढांपेगी, हर जगह से जहन्नुम के कैद खाने की तरह, जिसका नाम बोलस है, बोलस बी वाओ यानी बा वाओ लामसिन, ये वादी का नाम है, कैद खाना जहन्नुम का, इसमें हंकाए जाएंगे। आतिशों की आग इनको उबालेगी और जोश में लाएगी और ओसारा पिलाए जाएंगे। पूछा ओसारा क्या? फरमाया दोजखियों का धोवन, जख्मों के ऊपर से जो गंदगी निकलती है, और इसे तीनतुल खबाल भी कहते हैं। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2491। फिर इसी तरह दोजख जब बारों पर मुसल्लत कर दी गई, तिर्मिज़ी की रिवायत है 2574, दोजख में से एक गर्दन निकलेगी जिसके दो कान होंगे। इमेजिनेशन से सोचे, देखे, इमेजिनेट करें इसको, कान होंगे दो सुनते हुए, दो आंखें होंगी देखती हुई, और एक जुबान होगी बोलती हुई, और वो ये कहेगी, मैं तीन लोगों पर मुसल्लत की गई हूँ, तीन पे अल्लाह ने मुझे कह लीजिए असाइन कर दिया। नंबर एक जब्बार अनीद, अनीद वही जो अनाद रखने वाला, बुगज कीना, जब बार जबर करने वाला, और मुशरिक पर और मुसव्विरों पर यानी जो हाथ से जानदार मखलूक की तस्वीरें बनाते थे। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2574। और तकबुर इंसान को जहन्नुम में डलवाएगा, बाद में लिखिएगा, जहन्नुम में डलवाएगा तकबुर। अहमद की रिवायत है 215 जिल्द 2, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, अल्लाह ताला इसको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल देगा। और आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत वालों की खबर ना दूं? साहबा ने कहा, जी हाँ ज़रूर दीजिए। आपने फरमाया, आप ज़रा सोचिए ना कि अल्लाह के नबी के कहने का अंदाज़ कितना प्रोवोकिंग था। कैसे आप लोगों को इस चीज़ की रग़बत दिलाते थे कि बात सुनो। फिर आपने फरमाया, हर कमज़ोर आदमी जिसे कमज़ोर समझा जाता, अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला इसकी कसम पूरी कर देंगे। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दोजख वालों की खबर ना दूं? साहबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर फरमाइए। फरमाया, अब दोजख में कौन जाएंगे? चार लफ्ज़ लिख लें, हर जाहिल, अक्खड़ मिजाज, तकब्बुर करने वाला दोजखी है। तीन खूबियां, जाहिल, अक्खड़ मिजाज, तकब्बुर करने वाला। ये मुस्लिम की रिवायत है 7187। और इसी तरह से सही मुस्लिम 296 में एक रिवायत है, जिसमें तीन लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे और ना उनको पाक साफ़ करेंगे, ना उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नंबर एक, बूढ़ा जानी, झूठा बादशाह, और मुफलिस, तकब्बुर करने वाला। यानी तकब्बुर भी किया तो बग़ैर वजह के किया, है क्या जिस पे बड़ाई बंद का दावा करते हैं। और ख़ास तौर में जहन्नुम में तकब्बुर करने वालों के लिए ख़ास जगह होगी। अबू हुरैरा की रिवायत है, जन्नत दोजख ने अपने रब के हजूर झगड़ा किया। जन्नत ने कहा, रब क्या हाल है कि मुझ में कमज़ोर और गिरे पड़े ही लोग दाखिल होंगे? और दोजख ने कहा, मुझ में तो दाखिले के लिए मुतकब्बिरों को ख़ास कर दिया गया। यानी तकब्बुर वालों के जहन्नुम में जाने के ज़्यादा मौके होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा कि तू मेरी रहमत है, और जहन्नुम से कहा तू मेरा अजाब है। तवील रिवायत है जिसका खुलासा यही है। सूरह आराफ 56 भी ले लीजिए और बुखारी 7449। तो बात का खुलासा क्या निकला? ना खुद को बड़ा समझिए, ना बड़ा बनिए। अल्लाह का नाम अल मुतकब्बिर है और उसको सजता है। देखिए, कोई बंदा एक चीज़ पहनता है उसको सजती है, सजना समझते हैं ना, इट सूट्स हेम और हर। दूसरा वो चीज़ पहन ले उसको ज़रा भी नहीं सजेगी। तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सजता है। बल्कि जब तकब्बुर का लफ्ज़ अल्लाह के लिए आता है ना, तो खूबसूरत मानी होंगे। आप अल्लाह के नाम की सुनिए तफसीर अलमुतकब्बिर की, आपको सही, मुझे खुद भी वही पढ़ा के समझ आया था कि तकब्बुर होती क्या चीज़। अल्लाह को सजता है। जैसे बड़ा बंदा बहुत छोटी हरकतें करे तो अजीब लगता है ना, या बहुत बड़े ये बंदा, आप किसी जगह जाए शादी और दुल्हन ही बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में पहन बैठी होगी तो ऑकवर्ड लगेगा ना। बस ये समझे, अल्लाह की शान को सूट करता है कि वो तकबर करे, और हमें सजदा नहीं है। चंद आयतें नोट कर लीजिए। सूरत मोमिन 60, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत, बेशक जो लोग तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, अनकरी वो जहन्नुम में जाएंगे। दूसरी दलील सूरह ज़ुमर 72 की, लत खुल अबवाब जहन्नम खालदीन फ़ीहा फबीस मस्वल मुतकब्बिरीन। तर्जुमा आप ख़ुद लिखिएगा। और इसके बाद सही बुखारी की रिवायत 3485 इब्ने अमर से, जो मैंने पीछे इब्ने उमर से बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क है इसलिए बोल देती हूँ, कहा एक शख्स तकब्बुर की वजह से अपना तहबन ज़मीन पर घसीटता हुआ जा रहा था कि इसे ज़मीन में धंसा दिया गया, और अब वो क़यामत तक रोज़ ज़मीन में धंसता रहेगा। और इसी तरह से खुद पसंदी की वजह से एक शख्स ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। और ये हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी है कि जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर किब्र होगा, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फ़ी कल्बी ही मिसक़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। किब्र नहीं लाना अपने दिल में इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से आपको मुझे हमें बचाए कि जिनके दिल में बड़ाई हो, जो अपने आप को बड़ा समझने वाले हों। और कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका भी, तकब्बुर हक को झुठलाना भी। हमारे यहाँ तकब्बुर से अमूमन गर्दन अकड़ी हुई और बड़ा एक ऐसे बन आता है। एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगी, कुछ कपड़े होते ही ऐसे हैं कि जिनको पहनकर फीलिंग आने लगती है कि आपके अंदर बड़ाई है, ऐसे कपड़ों से जान छुड़ा ले। आप ये सब कुछ जन्नत में पहनेंगे। आगे जाकर अपने मामले को दुरुस्त करिएगा, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा गेटअप होता है ना, ये हमारे कामों में बहुत ज़्यादा मुआविन या फिर रुकावट होता है। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे चलें, क्योंकि जब बंदा खुद को बड़ा समझता है ना, तो फिर एक काम ज़रूर होता है उससे, चाहे ना चाहे, और वो जुल्म है। तरतीब समझ लें, जब आप खुद को बड़ा समझेंगे तो आप अपने आप को इतना बड़ा जो समझेंगे, तो फिर दूसरों पे तो जुल्म करेंगे। क्या सोच कर कि इनके साथ ये करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे पास ये इख्तियार है, मेरे पास ये है, तो जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का ज़रिया होगा। इन जुल्म जुलुमात यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का ज़रिया होगा। और जुल्म अरबी ज़ुबान में कहते हैं वद्दुन शैयुन फी गैरी महल्ली ही, किसी चीज़ को उसकी गैर मुनासिब जगह पे रखना। मसलन ये ग्लास है, इसको यहाँ रखना चाहिए ना, मुनासिब जगह है, लेकिन अगर इसको यहाँ रख दिया जाए, इधर रखे, हल्की सी भी इर्तियाश होगा ना, हल्का सा इर्तियाश होगा ना, तो ये ग्लास गिरेगा। और इसको मैं बिल्कुल यहाँ रख लूँ और मेरा अपना ही हाथ लगे तो गिरे, तो ये इस ग्लास के साथ जुल्म होगा। दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? इन शिर्क लजुल्मन अजीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। वजह, आप अल्लाह की जगह पे किसी और को रख देते हैं, अल्लाह ताला के साथ जो मामला होना था वो किसी और के साथ मामला करने लग जाते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि आप जब किसी को उसका हक नहीं देते ना, तो आप उस पर जुल्म करते हैं। हम तो खुद अल्लाह के हक में हैं, अल्लाह, हम तो खुद बजाते खुद अल्लाह का तो हम पर भी इख्तियार है, तो कहाँ हम फिर कोई चीज़ अल्लाह की उठाकर किसी दूसरे को दे दें। फिर इसी तरह से अल्लाह का फैसला क्या है? नंबर एक, अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देगा। आल इमरान 86, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। दूसरा फैसला अल्लाह का, जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत है। दलील हूद 18, अला लानतुल्लाही अलल ज़ालिमीन, तर्जमा आप खुद कीजिए। तीसरा फैसला अल्लाह का, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह। आल इमरान 57, वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। चौथा फैसला अल्लाह का, या पांचवा होगा, फोर्थ, चौथा फैसला अल्लाह का जुल्म वालों के साथ क्या है? कि वो हमेशा रहने वाले अजाब में रहेंगे। शूरा 45, अला इन ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम। और अगला फैसला अल्लाह का, सूरत मोमिन 18 में, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ी युता, ज़ालिमों के लिए ना तो कोई दिली दोस्त होगा और ना कोई सिफारशी जिसकी बात मानी जाए। और अगली बात याद रखिए कि जुल्म हराम है, जैसे शराब हराम है, जैसे खिंजीर हराम है। कैसे? अबी ज़र की रिवायत है, मुस्लिम 6575, और अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अपने रब से ये रिवायत नकल करता हूँ, यानी हदीस कुदसी, इन्नी हर्रमतु अला नफ्सी ज़ुल्मा, इन्नी हर्रमतु अला नफ्सी ज़ुल्मा वला इबादी फला तज़ालमू, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम किया है और अपने बंदों पर भी, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो, ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ज़रूर एक और जुल्म की कैफियत देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है 6666, चार दफ़ा 6 है। अबू हुरैरा रावी हैं, कहते हैं कि अबुल कासिम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अपने भाई की तरफ लोहे से इशारा करे तो बेशक फरिश्ते इस पर लानत करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो इससे बाज आ जाए अगरचे वो इसका सगा भाई हो। यानी ये दूसरे भाई के साथ जुल्म है कि आप उसकी तरफ हथियार करें और वो खुद ही चल जाए। मुराद जय कि अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और जो मैंने इंट्रो में बात बोली उसका हवाला, बुखारी 2447, अबू अब्दुल्ला बिन उमर, अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। फिर इसी तरह से एक और चीज़ जो जुल्म के साथ ही पैदा हो जाती है, वो क्या है? मज़लूम। आप जुल्म करेंगे तो ज़ालिम, जिस पे करेंगे तो वो मज़लूम, उसके क्या हक़ हैं? नोट करें, पहली बात है मज़लूम की दुआ कबूल होती है। बुखारी की रिवायत 2448, इत्तकी दावतल मज़लूम, दावत यानी दुआ, मज़लूम की बददुआ से बचो। क्यों? फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाही हिजाब, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दूसरी बात है कि मज़लूम की मदद करनी चाहिए, जालिम की भी करनी चाहिए। कैसे? बुखारी 2444, अनस रावी हैं, आपने फरमाया, उनसुर अखा का जालिमन और मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो। तो साहबा ने कहा कि मज़लूम की मदद तो हम कर सकते हैं लेकिन जालिम की कैसे करें? तो फरमाया क्या करो, ताखुज़ु फौक यदैही, उसका हाथ पकड़ लो, यानी अपनी कुव्वत के साथ उसको रोको। फिर इसी तरह से जुल्म कैसे होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल और एक बड़ी मिसाल देती हूँ आपको, इन दो के बीच में खुद ही चीज़ें डिसाइड करनी आसान लगेंगी। हदीस सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है 2489, इब्ने उमर से रिवायत है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना किया अल्लाह के नबी सल्लम ने किस बात से, आई यखरुनर रजुलू बैन तमरतैन जमीयन हत्ता यस्ताजीना अस्हाबहु, कोई शख्स दो दो खजूरें एक साथ मिलाकर मत खाए यहाँ तक कि अपने साथियों से इजाज़त ले। क्या समझे? ट्रे में आपके सामने यहाँ खजूरें पेश की गई, आप जितने लोग हैं अंदाजन उससे 2, 4, 10 ज़्यादा डाल दी खिलाने वाले ने, तो आप एक की जगह दो नहीं ले सकते। ज़रा सा अपने आप को शादी हॉलों के खाने के टेबलों पे खड़ा कीजिए, चावल तो मैं खाती नहीं मुझे शुगर है, रोटी खानी कोई नहीं क्योंकि उसमें वो बहुत है, क्या बहुत होता है, कार्बन। ये कबाब 7, 8, 10 दे दो मुझे, चटनी कबाब पहाड़ लगा कर ऊपर थोड़ा सा घास फैला लेते हैं सैलड का, लगे लोगों को सैलड ही है, अंदर बुनियादें बड़ी मजबूत है, ये जायज़ नहीं है। आपको खुद भी देख के लगेगा कि मेहमान के लिए किस तरह किसी ने मेज़बानी किया। अगर अब 10 लोगों के कबाब आप डाल गए तो 10 बेचारे आखिर में वो कबाब बोटियाँ ढूंढेंगे ना, और आप ये जो हमारे यहाँ खाना सुनते भाग लगती है ना, उसकी वजह ये है। इसकी अगर हर एक को पता है कि मेरे हिस्से का कबाब महफूज है तो फिर इतनी मुश्किल भी ना हो, और सिलेक्शन उस वक्त हो रही होती है कौन सी क्या लेना कैसे लेना। मना है, जितने जितनों का हिस्सा रखा हुआ है पर हेड सिस्टम है तो उसको इस तरह कंट्रोल कीजिए। फिर इसी तरह से अगली चीज़ देखिए जो इससे बदतरीन की कह लीजिए, बुखारी की रिवायत है 3196, आपने फरमाया जिस किसी ने ज़मीन में से कुछ भी नाहक ले लिया तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। आप कहते ना ज़मीन के नीचे 7 ज़मीनें हैं, अब ये बाउंड्री बन रही थी हमारे और RCM के बीच में और हमने 1 फुट जगह उनकी ज़्यादा लेकर अपनी दीवार ज़रा पीछे खींच दी, तो उनकी 1 फुट ज़मीन ये नहीं 7 फुट नीचे के भी आगे, और क़यामत के दिन गले में डालकर पेश किए जाएंगे, पहनो इसको। सोचिए ज़रा, जायदादों और विरसों के मामले में अल्लाह से डरिए, ये क़यामत के दिन गले में प्लॉट पहन पहन के फिरने पड़ेंगे ना तो रोएंगे, जान निकल जाएगी उस वक़्त। और ये जुल्म कोई गैर नहीं करता, और जो जुल्म हमारे अपने मुल्कों में लोग करते हैं, 4-4 फुट गली बाहर से अपने घरों में डाली हुई है, गली में गाड़ी नहीं मुड़ती, आपने इतनी बड़ी गाड़ी लेकर करना क्या? वो किसी ने कहा कि शादी थी तो जैसे वो क्या उसको गाड़ी को बोलते हैं, लेमोजिन, माशाल्लाह कैसा प्यारा नाम है, सुंडी की तरह की गाड़ी लेमोजिन हायर कर ली, बाद में वो आके गाड़ी जो है वो गली में फंस गई, पुलिस को बुला के पता नहीं किसको बुला के निकालनी पड़ी। तो जितनी चादर उतने पाँव, गाड़ियाँ नहीं मुड़ती और घर आपने बड़े बड़े बना लिए, तो बहरहाल यह है कि इस मामले में डरना चाहिए। फिर उसके बाद बुखारी की रिवायत 6534, अबू हुरैरा से, ये आपके भी लिए है और मेरे भी लिए है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो, ऑफकोर्स भाई या बहन, तो इसे चाहिए कि इससे दुनिया में मुआफ़ करवा ले क्योंकि वहाँ दिरहमो दीनार ना होंगे, पहले इसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, और अगर इसके पास नेकियाँ ना होंगी तो इसके भाई मज़लूम की बुराइयाँ इस पर डाल दी जाएंगी। सोचिए तो सही, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, इसको कहते हैं कि गुनाह बेलज़त, दूसरे के गुनाह आपके कंधों पे डल गए, करें क्या? बेस्ट वे किसी पे जुल्म करने से खुद को रोकने का, अपनी जुबान और अपने हाथ को काबू में रखें। सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों के साथ जुल्म होता है, بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان 11:11 ابی موسیٰ علیہ شری سے، آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے اچھا اسلام کس کا ہے؟ فرمایا، من سلیم المسلمون من لسانی ہی و یدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے، حاکم وقت کے پاس مقدمے لائے جاتے ہیں، آپ ایک اچھا سٹرانگ وکیل کر لیں حالانکہ آپ حق پہ نہیں ہیں، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ سن لیجئے، بخاری کی روایت 6967، ام سلمہ سے روایت ہے، آپ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ جو میں تم سے سنتا ہوں، پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نبی تھے، اس کے باوجود آپ کو نہیں پتا تھا کہ جو آ کے مدعی بنا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ جھوٹے مقدمے جیت بھی جائیں آپ تو بھی ہاریں گے۔ اور ٹو بی اے لائر، ہونا لائر ہونا یا لائر ہونا، دونوں کا آپ دیکھ لیجئے کتنا کلوز ہے۔ مت لیجئے ایسا مقدمہ کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت گنوا دیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور چیزوں کو ان کی جگہ دیجئے۔ پھر دیکھیے، لوگوں پہ بھی ظلم ہے۔ اب جو آپ نے کہا کسی چیز کو بے موقع یا بے محل رکھنا، انسان ہے، ماں باپ پہ ظلم ہے، آپ ان کو حق نہیں دے رہے، بیوی پہ ظلم ہے، آپ ان کے حقوق نہیں دے رہے، ہر معاملے میں یہ چیز جو ہے موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی نے آپ نے کسی کا مال دینا ہے، قرض لیا آپ نے، نہیں دے رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2287، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے، نہیں کرنا چاہیے ایسا معاملہ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے پھر ان کو وہ دعا سکھائی تھی جو آپ میں سے بہت ساروں کا آتی ہوگی، کون سی ہے بھلا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی ظلم کی بچت، ظلم سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں دوسروں پہ بھی ظلم نہ کروں۔ طویل روایت ہے، بخاری کی روایت ہے 7388، اور بہت سارے حوالے بھی ہیں مسلم سمیت۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ حضرت علی کا ایک قول مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مظلوم بن کر آؤں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں ظالم بن کر آؤں۔ تو میرا لئے مظلوم کو بہت سکون اور تسلی ملے گی اس بات سے کہ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے نا، میں تو نہیں کسی پہ کر رہی۔ تو یہ جو شروع میں ہم اگزامپل لے رہے تھے اس کے حساب سے بھی یہی بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑی چیز، ظلم کرنے والوں کے لیے ان کو امامت کے منصب پہ نہیں رکھا جائے گا۔ دلیل کسی کو یاد آئی ہے؟ خود ہی سے سوچے، سورت ابراہیم، سوری سورہ بقرہ 1:2:4، ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، جب بھی ابراہیم کو اللہ نے کچھ باتوں میں آزمایا تو وہ پورے ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو آپ لوگوں میں امام بناؤں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میرے اللہ تعالیٰ میری اولاد کے ساتھ بھی یہ بات ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے متعلق میرا عہد نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ظالم کو دنیا میں تھوڑی سی مہلت ضرور ملتی ہے، اصل میں ہوتی ہے ڈھیل کے بچ جائے، نہیں بچے گا تو زیادہ پکڑ ہوگی۔ بخاری 4686، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، लेकिन जब पकड़ता तो फिर उसे नहीं छोड़ता। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने यह आयत तिलावत की कि तेरे परवरदिगार की पकड़ ऐसी होती, वकज़ालिका बतशु रब्बिक, तेरे रब की पकड़ ही ऐसी है जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है जब वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, और बेशक उनकी पकड़ बड़ी तकलीफ़ देने वाली और बड़ी सख्त चीज़ है। तो जुल्म का नतीजा हमेशा बर्बादी की सूरत में आता है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इन पर जुल्म नहीं किया, वमा ज़लमून वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपने ऊपर ही जुल्म किया। अगर आदम अलैहिस्सलाम से भी भूल हुई और जन्नत में ऐसे दरख्त का फल चख लिया तो ये अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया था। और ये आयत जो थी सूरह हूद 101-102, अल्लाह ताला आपको मुझे बचा कर रखे ऐसी चीज़ों पे। सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग हैं नेक लेकिन दूसरों पे हो गया जुल्म, अब क्या होगा, जन्नत में जाएंगे कि नहीं? तो बुखारी 2440 अबू सईद अल-खुदरी से कहा, जब मोमिनों को दोजख से, और मतलब जब मोमिनों को दोजख से निजात मिल जाएगी तो उन्हें एक पुल पर जो जन्नत और दोजख के दरमियान होगा वहाँ रोक लिया जाएगा, और वहाँ मजालिम के बदले दिलाए जाएंगे जो दुनिया में एक दूसरे पे करते थे। फिर जब पाक साफ हो जाएंगे तो जन्नत में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इन में से हर शख्स अपने जन्नत के घर को अपने दुनिया के घर से भी ज़्यादा बेहतर तौर पर पहचानेगा। अल्लाह कंतरा पे जाकर ये सारे जुल्म सितम ख़त्म होने, हत्ता के बग़ैर सींग वाली बकरी और सींग वाली बकरी का भी मुकाबला होगा, और जिस पे जुल्म जिसने किया होगा उसको उससे दिलवाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको वापस पहुंचा दिया जाएगा। और जुल्म करने वालों को जहन्नुम के सिवा कोई और रास्ता क़यामत के दिन नहीं दिखाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाही क़द दल्लु दलालम बईदा, तो अल्लाह ना करे कि हम भी एक ही रास्ते की तरफ डायरेक्ट किए जाएं और वो जहन्नुम का हो। ये सूरत निसा 167-169 है। और बुखल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो जुल्म के नतीजे में पैदा होती है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। आखिरी बात, ईमान को जुल्म के साथ आलूदा ना करो, अमन मिलेगा। सूरत अल-अनाम 82, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, हकीकत में तो अमन उन्हीं के लिए है और वो राह रास्त पर हैं जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला आपको मुझे जुल्म से बचा के रखे। कोई सवाल है इससे मुतलिक? जी जी आप देखिए, एक होता एक वक्त आ गया सर पे, उस वक्त बोलेंगे तो झगड़ा होगा, उस वक्त बात को आया जाया कर दीजिए, फिर बात करेंगे, देखते हैं, कल सोचेंगे, टेक योर टाइम, चंद घंटे का ले लें। और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने नमाज़ों के जो औकात रखे हैं ना मुख्तलिफ, उसमें भी एक हिकमत है। झगड़ा हो रहा है खूब, है ये अलैहिस्सलाम, है ये अलफला, अच्छा नमाज के बाद बात होगी, ख़त्म हो जाएगी। हमारी एक साथ स्टूडेंट थी साथी क्लास की, तो वो उन्होंने अपना वाक्य सुनाया था कि घर में सुबह में कोई बहस हो गई, चख चख हुई होगी, कहने लगी मैं ये कहकर निकल आई कि आज शाम को खुल के बात करेंगे, अभी बात शुरू की तो लंबी हो जाएगी। अल्लाह का करना था क्लास में ही तो सारी यही बातें हो रही थी, माफ़ फॉरगिव ये वो, वहीं से शौहर को टेक्स कर दिया, आई एम सॉरी, इट वॉज़ माई फॉल्ट। उधर से भी जवाब आ गया, नहीं समथिंग वाज रॉन्ग विद फ्रॉम माय साइड टू, सारी बात खुल गई। देखिए वही शुरू में जो इतनी लंबी तमहीद थी ना, ये गंदगी उठा कर ना फिरें, एक वक्त की नमाज में लज्जत नहीं आएगी, ठीक है? तो उसके लिए फिर अच्छे मौके पे काउंसलिंग की। ये जो हम इमोशनल हो जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर आंसू भी निकल रहे हैं, नाक से भी पानी निकल रहा है, सू 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 भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। कोल्ड फैक्ट्स विदाउट इमोशंस, टॉक टू देम, इसी को काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलर कौन होता है जो दो ऐसे लोगों के बीच में आता है जो दोनों इमोशनल हुए हैं? तो अगर आप खुद इमोशनल होने से बच जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है? जी आप जी गुड, शाबाश। रिएक्ट करते कब है? जब हम दिमाग पे ले लेते हैं। वही शुरू की बात, दिमाग ठंडा रखें, बड़ी से बड़ी बात कंधों तक जमा लें, बस सर पे ना रखें तो ठीक होगी। अच्छा, एक दुआ भी है जुल्म से बचने की, आप मेरे साथ दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, बल्कि आपको आती भी होगी। घर से निकलने की दुआ किस किस को आती है? पढ़िए ज़रा मिलके। शाबाश। दूसरी एक और भी है ना? अरबी में पढ़े ना जी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा और उज़लमा और अजखला और युजखला अलैहि। चार लफ्ज़ हैं उसमें, बल्कि जो एक हदीस तिर्मिज़ी की आपको मैं लिखा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, 3427, उम्मे सलमा से ये रिवायत है। कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते तो ये दुआ पढ़ते, वही जो कि आपने अभी सबने मांग पढ़ी, बिस्मिल्लाही तवक्कल्तु अलल्लाही। बस इतने लफ्ज़ करके फिर आप कहते, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिन अन नज़िल्ला औ नज़िल्ला औ नज़लिमा औ नज़लमा औ न औ नजहला औ युजहला अलैना। अल्फाज फ़र्क हैं, ये सबकी तरफ से जो पहले आपको बता रही थी वो आपकी तरफ से होगी। मतलब क्या है कि अल्लाह आपके नाम से घर से निकलता हूँ आपके भरोसे पे, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे कि फिसल जाऊँ या राह भूल जाऊँ या जुल्म करूँ किसी पर या जहालत करूं या किसी से या मुझ पर जहालत बरती जाए। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है, दुआओं का साथ लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। जी आप, हाँ, इसका रेफरेंस नोट कर लें, तिर्मिज़ी 3427। ठीक है, यहाँ पे आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, 15 मिनट के अंदर वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह कुछ मज़ीद बातें सीखेंगे जो फिर इसी की आगे पैदावार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।